संति में गुरवो राजन बहवो बुद्धि मुपाश्रिताः यतो बुद्धि मुपादाय मुक्तो अट्टामिह ताच्छृणु पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधुः पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत एते मे गुरवो राजन। अवधू दत्तात्रेय प्रकृति से उपदेश ग्रहण करते हुए अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और मानव मात्र को भी जीवन के निर्माण की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने अग्नि से शिक्षा ग्रहण की ऊर्ध्वगामिता। जीव का स्वभाव है अधोगामी होना, लेकिन उसके स्वभाव में ये अधोगामिता नहीं है। पैदा होते ही जीव में बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो अधोगामी ले जाती हैं। वेदांत में एक शब्द है अज्ञान, और उस अज्ञान को अनादि बोला है। अनादि माने जिसका कोई आदि नहीं है। अनादि माने वो कब प्रारंभ हुआ इसका कोई पता नहीं है। हम अज्ञानी कब हुए, हम परमात्मा से कब बिछुड़े, हम उससे बिछुड़कर अज्ञान में कब प्रवेश कर गए इसका कोई पता नहीं है। उसकी समय की कोई सूचना नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्र ने कहा कि अनादि है अज्ञान, और इस अज्ञान का आश्रय जो जीवात्मा वो भी अनादि। जीव को भी अनादि कहा है और अज्ञान को भी अनादि कहा है। माने जब से अज्ञान है तब से वो जीव है, इसलिए जीव का और अज्ञान का अनादि साथ है। ये जब से जीव बना तब से इसके साथ अज्ञान लगा हुआ है, तभी तो वो जीव बना, वो परमात्मा से बिछुड़ा, परमात्मा को नहीं जानने की प्रक्रिया में प्रवेश किया, उसी समय वो चैतन्य जीव बना। परम पूज्य महाराज श्री एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे। वेदांत के सिद्धांत में ये सब कुछ परमात्मा है, ये सब कुछ ब्रह्म है, चैतन्य है, सब कुछ चैतन्य है। इसलिए आप कहते हैं घट चैतन्य, ये बहुत सुंदर बात है। घटोपहित चैतन्य बोलते हैं, हम पटोपहित चैतन्य बोलते हैं। जैसे सोना है सब, लेकिन अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। जो नाक में पहनते हैं वो भी सोना है, लेकिन उसका नाम कुछ और है। कान में पहनते हैं वो भी सोना है, लेकिन उसका नाम कुछ अलग है, और नाम के साथ उसका आकार ही अलग है। नाम रूप अलग है, लेकिन स्वर्ण तत्व एक है। ऐसे हम बोलते हैं घटोपहित चैतन्य, पटोपहित चैतन्य, जीव चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, ईश्वर चैतन्य। माने सभी कुछ जो भी दृश्य है और अदृश्य, जड़ चेतन, साकार निराकार, गुण निर्गुण, सब चैतन्य। लेकिन ये जो भेद हैं, ये जो अलग अलग मालूम पड़ रहा है, क्यों मालूम पड़ रहा है? ये जीव चैतन्य जीव क्यों मालूम पड़ रहा है? हम अपने आप को जीव के रूप में क्यों अनुभव कर रहे हैं? जीव का अर्थ यही है। आपको मालूम पड़ता है कि हम परमात्मा से अलग हैं। मालूम पड़ता है कि मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं शरीर में हूं, अत्रैव इह अस्मि, मैं यहीं पर हूं, इसी देश में हूं। ये परिच्छिन्नता जीव का स्वभाव, ये अज्ञानकृत है। ये नाम रूपात्मक परिच्छिन्न जो अनुभव हमारे अंदर है वो अज्ञानकृत है, और वो बहुत पुराना है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारा वो स्वभाव है, लेकिन वो अज्ञानकृत है। वो ये स्वभाव भी अज्ञान जन्य है, लेकिन इसका जो मूल है, इसका मूल है वो परमात्मा है, मूल है वो चैतन्य है। हम इस जीवात्मा का होना नीचे से नहीं मानते हैं, इसका होना ऊपर से, इसका मूल ऊपर है। इसलिए हम होना चाहते हैं वो ऊपर होना चाहते हैं, हम असत्य नहीं होना चाहते, हम सत्य होना चाहते हैं, हम दुख नहीं होना चाहते, हम आनंद होना चाहते हैं, हम होना चाहते हैं, हम नहीं होना नहीं चाहते। ये तो हमारा होना, ये अस्तित्वगत भाव, ये मूल स्वभाव है। हमेशा हम आनंद चाहते हैं, चाहे आदमी कहां और कैसे किस अवस्था में जिए, लेकिन वो आनंद चाहते हैं, क्योंकि आनंद उसका मूल स्वभाव है। जिसका जो मूल स्वभाव होता है उसकी निरंतर चाह उसमें बनी रहती है। और अस्तित्व, हमेशा हम अस्तित्व को चाहते हैं। मान भुवम भूयासम एव, पंचदशीकार ने कहा मान भुवम इति न, मैं न रहूं ऐसा कभी नहीं होता है। आदमी को ऐसा कभी नहीं लगता है कि मैं न रहूं, आदमी को लगता है हमेशा मैं बना रहूं। निरंतर अस्तित्व की चाह, ये सत होने की चाह है। और कोई भी आदमी अज्ञान को नहीं चाहता है, जड़ता को कोई पसंद नहीं करता है। आप किसी जड़ मूर्ख व्यक्ति को भी आप बोलिए कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत प्रसन्न हो जाता है। और एक अज्ञानी व्यक्ति को भी आप बोलिए कि आप बेवकूफ हैं, वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसके होने का जो भाव है वो मूर्खता नहीं है। उसका स्वभाव मूर्खता नहीं है, उसका स्वभाव ज्ञान है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि वो चित्त है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सच्चित आनंद ब्रह्म है, और वो जीव का मूल स्वभाव है। इसलिए हमेशा ऊर्ध्वगामी स्वभाव होने के कारण वो हमेशा चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। जीवात्मा ऊपर उठना चाहता है। कठोपनिषद में बहुत एक सुंदर बात कही, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतत् तौ संपरित्य विविनक्ति धीराः। आचार्य यम उपदेश करते हुए कहते हैं दो मार्ग हैं हमारे सामने, दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। हम वासना नहीं चाहते, हम निर्वसन होना चाहते हैं। वासना एक बहुत बड़ा बोझ है, वासना बहुत बड़ा दुख है, और निर्वसनता आनंद है, शांति है। काम एक बहुत बड़ा बोझ है, वो आनंद नहीं, वो दुख है, एक रोग है, एक बीमारी की तरह। और निष्कामता आनंद है, स्वस्थता है, बोझ नहीं है, वो बहुत बड़ा हल्कापन है। ये आपके जीवन के जो भी हैं, लोभ है, जलन है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारी चीजें रोग की तरह है, बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी अशांति है, और ये सब वासना के विस्तार है। इसलिए आप जब गिनते हैं तो सबसे पहले काम से शुरू करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये बहुत सारी चीजें हैं, और इस सबके मूल में सबसे पहले आप गिनते हैं काम, क्योंकि काम सबका मूल है। लोभ का भी मूल काम है, क्रोध का भी मूल काम है, द्वेष का भी मूल काम है। काम माने वासना, काम माने इच्छा। ये लोभ ये काम का, इच्छा का विस्तार। हमने चाहा कोई चीज मिली, मिलने के बाद वो चाह समाप्त नहीं होती है, वो चाह और मजबूत हो जाती, और चाहिए। आपने चाहा एक रुपया मिले, एक रुपया मिला, चाह पूरी नहीं होती है, दो रुपया चाहिए। दो रुपये मिले, चाह पूरी नहीं होती है, चार चाहिए। और ये चाह की, चाह कभी खत्म नहीं होती है, ये चाह अनंत है। ये चाह विस्तार को प्राप्त हो जाती है, तब उसको आप लोभ बोलते हैं। ये लोभ और कुछ नहीं है, चाह जब बढ़ गई और चाहिए, और ये कुछ भी और चाहिए, आप जो भी चाहते हैं और और और, वही तो लोभ, ये चाह का विस्तार। और जब चाह पूरी नहीं होती है तो वो क्रोध में बदल जाती है, आदमी में क्रोध आता है। क्यों आता है? आपकी चाह पूरी नहीं हुई तो वो चाह क्रोध में बदल गई, ये क्रोध चाह का विस्तार है। भगवान ने गीता जी में बोला, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। आपने चाहा, देखा, सुना और हमारे अंदर चाह पैदा हो, जब वो मिला तो लोभ बन गई, और जब वो तृप्त नहीं हुई चाह, तो क्रोध में बदल गई। ये हमारे जीवन का सत्य है। क्रोध आता ही तब है जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। आप बोलते भी हैं, अरे हमने कहा और तुमने नहीं किया, हमने मांगा और तुमने नहीं दिया, ये क्रोध में बदल गई हमारी कामना। और आगे का सारा विस्तार ये कामना का ही विस्तार है। जैसे द्वेष पैदा हुआ, जलन, घृणा, ये जो भी मनो उद्वेग, सब कामना के विस्तार है। सबका मूल काम, काम माने इच्छा, और ये बहुत बड़ा बोझ है। चाह के साथ पीड़ा है, इच्छा के साथ पीड़ा जुड़ी हुई है। और जो आपको आनंद का अनुभव हुआ सा मालूम पड़ता है, वो आनंद उस पीड़ा के मिटने का है, इच्छा के मिटने का है, उन विषयों का नहीं है। न्याय दर्शन में एक बहुत सुंदर बात कही, जैसे कि कोई आदमी अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ लेके चल रहा है, गर्मी का दिन है, पसीना पसीना हो रहा है, भूखा है, प्यासा है, और उस बोझ से बहुत पीड़ित है, वो बहुत पीड़ित है, वो जैसे ही अपना बोझ जमीन पर उतारता है और वो परम आनंद में चला जाता है। ओहो हो, कितना खुश हुआ। वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, वो क्या है? आनंद है कि बोझ का उतरना है? अपने को तो ऐसा लगता है कि उसको आनंद हुआ है, लेकिन वो आनंद और कोई नहीं है, वो केवल बोझ का उतरना है। बोझ उतर गया, वो बोझ ही दुख था, वो बहुत बड़ी पीड़ा थी। ऐसे हमारे जीवन में जितने भी आनंद हमें मालूम पड़ता है, वो सारे बोझ के उतरने के हैं, वो बोझ उतरना भर हैं। भूख एक बहुत बड़ी पीड़ा है, हमें भूख लगती नहीं, वो बात अलग है। हम बिना भूख ही भोजन करते हैं, ये बात बिल्कुल अलग है। हमें भूख का पता ही नहीं चलता है, हम भूख देखकर नहीं खाते, हम घड़ी देख कर खाते हैं। हम घड़ी देखते हैं 12 बजे की नहीं, 11:30 बजे की नहीं, 2 बजे की नहीं, 8 बजे की नहीं, हम घड़ी देख के खाते हैं, हम भूख देख के नहीं खाते हैं। और इसीलिए तो बीमार हो जाते हैं। और ये हमारा शरीर बहुत सारी क्रियाएं घड़ी देख के करते हैं, बाथरूम भी घड़ी देख के होती है। आपका शरीर तैयार नहीं है, अभी पाचन पूरा नहीं हुआ है। जो भी आपने अपने शरीर को अन्न दिया, वो सारा कस उन्होंने निकाला नहीं है। और प्रकृति है, जब तक वो पूरा कस नहीं निकालती, तब तक वो अनुपयोगी चीजें मल के रूप में बाहर नहीं फेंकती। लेकिन हमने उसको प्रकृति के साथ जीना नहीं सीखा, हम घड़ी के साथ जी रहे हैं। तो वहां पाचन की प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही घड़ी देख के बाथरूम चला जाता है आदमी। बहुत सारी चीजें हैं, यदि आपको भूख लग जाए तो बहुत पीड़ा है। वो आपने कभी देखा होगा, बच्चों को देखा होगा, जब उसको भूख लगती है तो रोना शुरू कर देते हैं। बच्चे को भूख लगती है तो बहुत परेशान हुए, वो नाचना शुरू कर देता है, नाचता है वो। आपको भूख लगे, आपके अंदर व्याकुलता पैदा हो, ये स्वस्थता है, वो व्यावहारिक स्वस्थता है, तो बहुत बड़ी पीड़ा है। पीड़ा भी एक स्वस्थता है, पीड़ा भी एक जीवन है। हम उसको अपने जीवन से अलग देखते हैं। और जब आपको भूख लगती है तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए आप भोजन करते हैं, और जितनी गहरी पीड़ा होगी उतना ही गहरा आनंद होगा। आपको जितनी गहरी भूख लगेगी उतना ही ज्यादा गहरा भोजन में आनंद मिलेगा। वो भोजन का आनंद बहुत गहरा जो आपको मिला, वो पीड़ा जन्य है, पीड़ा के उतरने का है, बोझ कुछ हल्का होने का है। ये दुनिया के जितने भी आनंद हैं, ये पीड़ा जन्य है, ये पीड़ा के उतरने के, बोझ के उतरने के आनंद हैं। इसलिए वेदांत ने कहा कि दुनिया के किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं है, वो आनंद केवल इच्छा के मिटने के हैं। आप जैसे जैसे भोजन करते रहे, वैसे वैसे आपकी इच्छा मिटती रही, और उस इच्छा के मिटने को ही आपने आनंद समझा, इच्छा के मिटने को ही आनंद समझा। ये बहुत बड़ा बोझ है, वासना बहुत बड़ा बोझ है, निर्वसनता आनंद है, सुख है, शांति है। या हमारे जीवन की जो भी चीजें हैं, पतन, वासना पतन है, केने शीतम प्रेषितम पतति मन, केनोपनिषद ने कहा कि ये मन गिरता है विषयों में, ये विषयों में जाना ही इसका पतन है, ये वासना ही पतन। और इसका मूल जो आनंद है, मूल जो शांति है, वो ऊर्ध्वगामिता उठने में, गिरने में नहीं, उठने में आनंद है। और इसलिए मजबूरी है, गिरना मजबूरी है, काम मजबूरी है। इसलिए श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतत तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा। इसके लिए बहुत बड़े धैर्य की जरूरत पड़ती है उठने के लिए, काम से अकाम होने के लिए बहुत बड़े धैर्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए आचार्य यम ने शब्द का प्रयोग किया धीरह, बहने के लिए आपको धैर्य की जरूरत है, आप जल में बह रहे हैं वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां धैर्य की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं बोलते हैं कि मैं बहा बहुत धैर्य से, मैं गिरा बहुत धैर्य से, ऐसा आप नहीं बोलते हैं। आप बह रहे हैं वहां कोई धैर्य नहीं है, आप बह रहे हैं वहां कोई पुरुषार्थ नहीं है, वहां कुछ करना भी नहीं, आप बह रहे हैं, बहने के लिए कुछ करना नहीं है, उठने के लिए तैरने के लिए वहां करना है, वहां बहुत बड़े धैर्य की बात है, वहां बहुत बड़े होश की बात है, वहां चैतन्य की बात है। आप बह रहे हैं और आपने होश खोया, आपकी चैतन्यता खोई तो आप कभी बाहर नहीं निकलोगे, और बहते हुए यदि होश में हैं तो आप मार्ग खोजेंगे, आपको मार्ग दिखेगा, आपको किनारा दिखाई दे। काम एक बहुत बड़ी बेहोशी है, और उस बेहोशी में भी होश हो, किनारा किसको मालूम पड़ता है? जो होश में है, जो बेहोश है उसको किनारा मालूम नहीं पड़ता है। और किनारा मालूम हुए बिना आप किनारे तक पहुंचने का प्रयत्न कैसे करोगे? आप पानी में बह रहे हैं और आपको किनारा मालूम न पड़े तो आप किनारे तक जाएंगे कैसे? एक बहुत पुरानी बात है, हमारे एक साथी थे, हम लोग ऋषिकेश में रहते थे, एक अन्न क्षेत्र में भोजन करते थे, एक छोटे से आश्रम में रहते थे, कैलाश आश्रम में पढ़ते थे। हमारे सामने स्वर्गाश्रम था, कैलाश आश्रम के सामने एक आश्रम है स्वर्गाश्रम, उस पार हम पढ़ते थे, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज के पास पंचदशी पढ़ते थे, चित्सुखी पढ़ी, अद्वैत सिद्धि पढ़ी, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत बड़े विद्वान तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है आज के युग में स्वामी जी महाराज। हम दो ब्रह्मचारी वहां पर पहुंचे स्नान करने के लिए, और वहां पर गंगा जी बहुत लंबी चौड़ी थी, अभी तो घाट बना है, उस समय घाट नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं इसको पार करूंगा, मैंने कहा मैं भी पार करूंगा, और वो गंगा जी कोई पार करता नहीं है, लेकिन हम दोनों ने कहा हम पार, उन्होंने कहा पार करें, हम भी कहेंगे पार करें, उन्होंने कहा मैं जाके वापस आऊंगा, मैंने कहा मैं वापस नहीं आऊंगा, जाऊंगा उधर से आऊंगा। मैं छोटा था, अब वो तो चले गए, वो बड़े थे। और जैसे मैं बीच में गया, वहां बहुत बड़ी बड़ी लहरें थी, और उन लहरों में मैं खो गया, और एक समय ऐसा आया कि मेरे को मालूम होना ही बंद हो गया कि मैं किधर से आया, اس کا کنارہ کدھر ہے؟ آپ کو دکھائی تو دینا وہ سامنے کنارہ ہے، تو آپ کی ہمت ہوگی، آپ کی دشا ہوگی، آپ کی پرگتی ہوگی، آپ کی کریا ہوگی. یا تو واپس آنے کے لیے آپ کو کنارہ معلوم پڑے، یہ کنارہ ہے، میں گھبرا گیا، میں سمجھ گیا کہ اب گیا، اور وہ جو پرتسپردھاتمک جو بھاؤ تھا وہ ختم ہو گیا، اب میرے کو اپنا ساتھی بھی دکھائی دینا بند ہو گیا. میں نے سوچا کچھ بھی ہو، اب اپنے کو کنارہ دیکھنا ہے. اب وہ کنارہ کدھر کا، سامنے والا کنارہ یا پیچھے والا؟ اب میں کوشش کرنے لگا کنارہ کدھر ہے اور کون سا کنارہ نزدیک ہے. میں سمجھ گیا واپس والا کنارہ زیادہ نزدیک معلوم پڑا. واپس ہو گیا میں، اور باہر کے بہت سارے لوگ چنتت تھے، اب یہ برہمچاری گیا. واپس آ گیا میں. معلوم ہونا چاہیے کنارہ. آپ ہوش میں ہوں گے تو کنارہ معلوم پڑے گا، آپ بے ہوشی میں ہوں گے تو کنارہ معلوم نہیں پڑے. ہم کرودھ میں ہیں، کنارہ معلوم پڑے. ہم کام میں ہیں، اتنے بے ہوش نہ ہو جائے کہ کنارہ ہی معلوم نہ پڑے. اور جیسے آپ کو معلوم پڑتا ہے کنارہ، تو آپ اپنے آپ کنارے کی طرف کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس لیے دھیرے کی ضرورت، بہت بڑے دھیرے کی ضرورت ہے. ہم جہاں بھی جیے، کام میں، کرودھ میں، لوبھ میں، جلن میں، گھنا میں، وہاں ہوش ہو، وہاں دھیرے ہو، آپ کو معلوم پڑے گا. آپ کو معلوم پڑے گا یہ چیز اچھی نہیں ہے. آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. سمجھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو رہا ہے، کنارہ معلوم ہو رہا ہے. آدمی کو معلوم ہی تو نہیں ہوتا ہے. آدمی کروت کرتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں کروت کرتا ہوں اور اس سے باہر ہونا ہے. کام میں آدمی کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کچھ غلط ہے اور اس سے مجھے باہر آنا ہے. جلن میں، گھنا میں، اسطیہ بھاشن میں، بےمانی میں آدمی کو معلوم نہیں پڑتا ہے. اس لیے یہاں پر کٹھوپ نشد نے کہا دھیر، اور کہا کشچت. یہ بہت ویرلے کی بات ہے. شرے اور پریہ دو مارگ ہیں. یہ کنارے کے طرف جانے کا مارگ ہے، یہ شرے مارگ ہے، اور جو بہنے کا مارگ ہے وہ پری مارگ ہے، بڑا پری ہے، واسنا کا مارگ. بہنے کا مارگ بہت پری ہے کیونکہ کچھ وہاں کرنا نہیں ہے، کیول بہنا ہے. اور تیرنے کا مارگ بہت کٹھن، وہاں شرم کرنا پڑتا ہے، پرشارتھ کرنا پڑتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے. یہ جیو کا مول سوبھاؤ ہے. پرماتما، اکام، نروسن، کنارہ، بہنا سوبھاؤ نہیں ہے، کنارے پر پہنچنا سوبھاؤ ہے. اور وہ معلوم پڑا، اندر کا سوبھاؤ معلوم پڑا اودھ دتاترے کو، انہوں نے دیکھا اگنی کو. کئی بار معلوم پڑتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر معلوم پڑتا ہے، ज्ञानी को देखकर मालूम पड़ता अपना स्वभाव. या था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ज्ञानी को देखकर अपने स्वभाव का पता होना है. अपने स्वभाव का पता होना है. आपने सुना होगा एक कोई शेर का बच्चा था, वो बिछुड़ गया, اور وہ ایسا بچھڑا وہ بھیڑ بکریوں کے بیچ میں گیا. और भेड़ बकरियों का दूध पीते पीते वो उनके बीच में पला बढ़ा और वो अपने आप को भेड़ बकरियां ही समझने लगा और वैसे ही नीचे गर्दन करके चलता था बकरियों के बीच में और वो मिमियाता था, वैसे ही था वो। एक दिन शेर आया और उस शेर को देखकर सारी बकरियां भेड़ और वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। शेर ने देखा कि ये तो शेर का बच्चा मालूम पड़ता है और ये भाग रहा है, मेरे को देख के भाग रहा है और ये बकरियों के बीच में और वो नीचे गर्दन करके मेमे आते हुए। उसने उसको पकड़ा और पकड़ करके उन्होंने कहा कि देखो जो तुम हो वो मैं हूं, तुम शेर के बच्चे हो, ये भेड़ बकरियां इसके साथ भागने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, तुम शेर के शिकार नहीं हो, ये बकरियां तुम्हारी शिकार हैं, भागने के लिए तुम पैदा नहीं हो। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा नहीं, ये मम्मी पापा तो हमारे ये हैं, ये बकरियां हमारा समाज है। वो ले गया, शेर बड़ा समझदार रहा होगा, प्रेमपुरी में आता होगा, सत्संगी रहा होगा। वो उठा के ले गया और ले जाके उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि तुम मेरे को देखो। एक कुएं पर ले गया और उन्हें कहा कि इस कुएं में तुम देखो और याद करो तुम उन बकरियों को, और तुम याद करो मेरे को और तुम देखो अपने शरीर को। देखा उन्होंने, उन्होंने देखा बकरियों का शरीर कुछ अलग था, बिल्कुल ही अलग था, जिसको समझ रहा था वो बिल्कुल ही अलग था। और उन्हें उस शेर के आकृति को देखा और अपने शरीर को देखा, वो समझ गया, उसको याद आ गया अपना स्वभाव। उस शेर को देखकर, उसकी आकृति को देखकर उसको अपना स्वभाव याद आ गया। ओहो, इसलिए आप अर्जुन को देखते हैं, वो बोलता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में अर्जुन को याद आ गया। आप ज्ञानी के सानिध्य में जाते हैं तो आपको अपना होना याद आ जाता है, अपने मूल का पता हो जाता है। अवधि दत्तात्रेय ने देखा अग्नि को और अग्नि को देखकर उन्हें याद आई अपने मूल स्वभाव की, मेरे को भी होना है ऐसे उर्फ का। ये गिरे हुए होना यह हमारा स्वभाव नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं गिरना बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा गिरे हुए होना बहुत बुरा है। आदमी के जीवन में गलती होना बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा गलती में पड़े रहना बहुत बुरा है। आदमी गिर गया ये स्वभाव नहीं है, अब वो आदमी क्या गिरता ही रहेगा क्या? नहीं, उसका स्वभाव नहीं है गिरना, वो गिरा अब उसको उठना चाहिए। वासना उसका स्वभाव नहीं, उसको निर्वसन होना चाहिए, उसे ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगामिता, और अग्नि का स्वभाव है नारायण, अग्नि में आप जो भी जाते, अग्नि के सानिध्य में जो भी आता है उसको अग्नि जला के नष्ट कर देती है। आप अग्नि में चंदन की लकड़ी डालेंगे वो भी जलकर राख हो जाती है, और आप कोई गंदगी भी डालते हैं तो भी जलकर राख हो जाती है। उसका स्वभाव है, बहुत गंदगी है लेकिन वो भी, और उसके बाद मालूम नहीं पड़ती है। राख होने के बाद आपको मालूम नहीं पड़ता कि राख किसकी है, वो राख राख है। आपने चंदन को जलाया वो भी राख, अन्य ने कोई लकड़ी जलाई वो भी तो राख है, बराबर अग्नि को आप पूछो, अग्नि बोलेगी मेरे को नहीं मालूम। ये बहुत गहरी बात है। और जो दत्तात्रेय ने ये शिक्षा ली, हमारे पास बहुत सारी चीजें आएगी तो हमें उसको पचा लेना चाहिए। हम पचाते नहीं, हम रखते हैं, हम जमा के रखते हैं, और वो बहुत को जमा के रखते हैं, कूड़ा करकट। हम अपने माइंड में बहुत सारी चीजें रखते हैं, कोई अच्छी चीज हमारे जीवन में आई वो, और कोई बुरी भी चीज आई, उन दोनों को राख कर लेना चाहिए। एक सामान्य व्यवहार की बात है, आप किसी व्यक्ति के अवगुणों को श्रवण करते हैं तो उसको हम जमा करके रखते हैं। हम सोचते हो वो आदमी बहुत बुरा है, वो आदमी बहुत बुरा है, आपने उसको जमा करके रखा, आपने पचाया नहीं। कोई अच्छा आदमी आया तो आप वो भी जमा के रखते हैं, वो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये दोनों चीजें ये अलग नहीं, आपके अंदर बुरा देखने की आदत है तो आप अच्छा देखो, आपके अंदर अच्छा देखने की आदत है तो किसी में बुरा देखेंगे। ये सापेक्ष सिद्धांत है, सापेक्षता से ये आदत है, आप किसी में बुरा देखते हैं तो किसी में अच्छा जरूर देखेंगे, और किसी में अच्छा देखते हैं तो किसी में बुरा जरूर देखेंगे। इसलिए ये गीता के सिद्धांत के अनुसार, वेदांत के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों चीजें हमारे लिए अनुकूल नहीं है। हम अच्छे और बुरे से ऊपर हो जाए, सुख और दुख से ऊपर हो जाए। जब कपिल भगवान ने मां को उपदेश किया, देवहूति को ज्ञान का उपदेश किया, तो वहां यही बात बोली। भगवान ने कहा मां आप ऊपर उठो, सुख और दुख से, ये दोनों चीजें ये हमारे मन का पतन है, सुख भी और दुख भी, मान भी और अपमान भी, शीत और उष्ण, ये द्वंद्वात्मक जो प्रपंच है इससे अपने को ऊपर उठना है, इन दोनों में सम होने का प्रयत्न करना है। आप सुख में अटके तो आप दुख से जरूर भागेंगे, आपको सुख बहुत अच्छा लगा तो दुख आपको बहुत बुरा लगेगा, ये नियम है। इसलिए दोनों चीजों से हमें विरत होना है, हमें अलग होना है। और जो दत्तात्रेय ने अग्नि से शिक्षा ली, अग्नि में जो भी आता है उसको वो स्वाहा कर देती है, उसके संस्कार भी अवशेष नहीं रहते हैं। हम जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं, देखते हैं, वो संस्कारों में अवशेष हो जाती है, संस्कारों में अवशिष्ट हो जाती है, वो हमारे अंदर पड़ी रहती है, और पुनः वो यादों के रूप में, वो स्मृतियों के रूप में बाहर आ जाती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए जो भी चीज हमारे जीवन में आ जाए, हमारे इंद्रियों का विषय हो, वो चीज वहीं समाप्त हो जाए, वो आगे न बढ़े, वो वासना का विस्तार न बने। और उन्होंने अग्नि से शिक्षा ली, अग्नि हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आप वेदांत में श्रवण करते हैं, अग्नि लकड़ी में भी, माचिस में, हर जगह पर अग्नि है, और वो कभी छिपी रहती है, वो कभी प्रकट रहती है। माचिस के तिली में अग्नि है, आपके हाथों में अग्नि है, जब आप रगड़ते हैं तो प्रकट हो जाती है। तो उन्होंने देखा अग्नि का एक स्वभाव है, वो कभी प्रकट होती है कभी वो अप्रकट होती है। उसका अस्तित्व दोनों प्रकार से है, वैसे हमें होना चाहिए, कभी प्रकट होना चाहिए और कभी अप्रकट होना चाहिए। हमेशा होने का दिखावा ये बहुत अच्छा नहीं है, ये होने का दिखावा बहुत दुखद है। हम अपने होने को दिखाना चाहते हैं। आदमी समझदार है तो उस समझदारी को दिखाना चाहता है, आदमी कभी बेवकूफी दिखाना नहीं चाहता है। बेवकूफ होना कोई स्वाभिमान की चीज नहीं, कोई आदमी कभी नहीं कहता कि मैं बेवकूफ हूं। बहुत स्वाभिमान से कोई नहीं कहता कि मैं बहुत नासमझ हूं, और इसलिए नासमझ होना व्यक्ति कभी दिखाता नहीं है, उसको छिपाता है, और वो समझदारी दिखाता है, मैं समझदार हूं। बहुत सारा हमारा होना वो दिखावा बन जाते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, उसको छिपाना नहीं चाहते, लेकिन उल्टा है। हमें अपनी बुराइयों को प्रकट करना चाहिए और अच्छाइयों को छिपाना चाहिए। आप बताएं कि हमारे अंदर ये दोष हैं, क्योंकि दोषों का होना आपको विनम्रता में ले जाते हैं, आपको दोष अहंकारी नहीं बनाते, आपको विनम्र बनाते हैं, और अच्छाइयों का होना हमें अभिमान में ले जाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं तो आपके अंदर वो अहंकार है, लेकिन आप बुरे हैं तो उसका कोई अहंकार नहीं। यही तो है, आदमी अच्छाइयों को दिखाता है क्योंकि उसमें अहंकार है, उसमें प्रदर्शन है, और जहां पर बुराइयां हैं उसको आप छिपाते हैं। लेकिन आप अपनी कमियों को जब प्रकट करते हैं तो वहां से विनम्रता शुरू हो जाती है। आपको मालूम हो ये चीज मेरे को मालूम नहीं है, और ये बहुत बड़ी विनम्रता है। आपको मालूम नहीं है वो बहुत बड़ी विनम्रता है, और आपको मालूम नहीं है उसके बाद भी आप मालूम होने की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो अहंकार है। इसलिए हमारे अंदर कमियां हो और वो कमियां दूसरे को मालूम हो जाए वो ठीक है, इसमें क्या बुरा है। आप बहुत ईमानदार हैं, आपके अंदर विनम्रता पैदा होगी। एक हमारे प्रोफेसर थे, अभी भी हैं, वो इतने विनम्र इतने ज्ञानी, बनारस की बात है, बीएचयू, वो अपने विद्यार्थियों के साथ जब होते थे पढ़ाते थे, बहुत बड़े बड़े दर्शन शास्त्र के ग्रंथ, और किसी विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा उन्हें और उस प्रश्न का उत्तर उनको मालूम ना हो तो वो बोल देते थे इसका उत्तर कल देता हूं, इसका उत्तर कल दूंगा, मैं सोच के आऊंगा। और जब वो बोलते थे मैं सोच के आऊंगा तो हमारे मन में उनके प्रति और आदर पैदा हो जाता था, और आदर पैदा हो जाता था। ओहो, हमारे प्रोफेसर इतने अच्छे हैं, और बहुत बड़े विद्वान थे। कई बार तो वो अपने गमछे में गांठ बांध कर ले जाते, गांठ बांध कर, ऐसे कई गांठें उनके गमछे में हुआ करती थी। तो हमने एक दिन पूछा, गुरुजी गांठ क्यों बांधते हैं आप, ये दो तीन गांठें मैं खोल दूं? उन्होंने कहा नहीं, इस गांठों में बंधे हुए प्रश्न बन रहे हैं। बोले जब मैं घर जाऊंगा और गमछा उतारूंगा तो मेरे हाथ में ये गांठें लगेगी, तब मेरे को मालूम पड़ेगा ओ इस गांठ पे क्या प्रश्न है, उसका हल करना है, मैं भूलने जाऊं। ये प्रश्न मैं इन गांठों में बांध के घर ले जाता हूं, और वहां पुस्तकों में देखकर मेरे विद्यार्थियों के प्रश्नों का हल निकालता हूं। वो कितनी बड़ी विनम्रता है, कितनी बड़ी समझदारी है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं आने के बाद क्रोध करते हैं, सामने वाले को जलील कर देते हैं, उस प्रश्न को स्वीकार नहीं करते। जब उत्तर न आए तो बोल देना चाहिए उत्तर नहीं आता है, लेकिन हम उसके प्रश्न को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए नारायण हमारे जीवन में कमियां हैं, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और हमें बहुत समझदार होने का दिखावा भी नहीं करना चाहिए। कभी छिप के रहना हो तो छिप कर रहे, क्या फर्क पड़ता है। आप कभी बहस कर रहे हैं और बहस करते समय आप हार रहे हैं, आप अज्ञानी सिद्ध हो रहे हैं, तो आप अज्ञानी सिद्ध हो जाइए, उसमें क्या बुरा है, उसमें क्या बुरा है। आप बहुत बड़े समझदार हैं, लेकिन आपको अपनी समझदारी को छिपाना पड़ रहा है, आपको बेवकूफ की तरह रहना पड़ रहा है, वो रहिए। आप याग्नि का स्वभाव है कभी प्रकट होना कभी अप्रकट होना, गुणवान होने के बाद भी उन गुणों को छिपा के रहना, ये उन्होंने अग्नि से शिक्षा ली, ये साधु का स्वभाव है, ये बहुत बड़ा अवधूत मनोवृत्ति का स्वभाव है। इतने बड़े ज्ञानी हैं, अवधूत दत्तात्रेय, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ते। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको कोई नहीं जानता था, उसको आज दुनिया जानती है। जिन्होंने अपने को छिपाया वो दुनिया में छप गए, और जिन्होंने अपने को छपाया वो दुनिया से छिप गए। आप कबीरदास जी को देखें, रामकृष्ण परमहंस जी को देखें, ये बहुत बड़े बड़े साधु थे जिन्होंने अपने को कभी प्रकट करने का प्रयत्न ही नहीं किया, हमेशा उन्होंने अपने को छिपाया, अपनी साधना छिपाई और वो प्रकट हुए। उन्होंने कभी दावा नहीं किया, रामकृष्ण परमहंस ने कभी दावा नहीं किया कि मैं भगवान हो गया। लोगों ने कहा कि हमारे भगवान हैं, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं भगवान हूं। कबीरदास जी ने कभी दावा नहीं किया कि मैं भगवान हूं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कभी दावा नहीं किया कि मैं भगवान हूं। उन्होंने हमेशा अपनी अनुभूति को छिपाया, और ये छिपाना बुरा नहीं। आप छिपाते हैं, मूल्यवान चीज को छिपाते हैं, और छिपाने से मूल्यवान चीज का मूल्य कभी कम नहीं होता, और बढ़ जाता है। आपके घर में जो मूल्यवान चीज है उसको आप छिपा के रखते हैं, और वहां तो छिपाने का भी भाव नहीं है। रामकृष्ण परमहंस छिपाने और प्रकट होने, इन दोनों भावों से ऊपर हैं, वो केवल हैं। अवधूत दत्तात्रेय अपने आप को दिखाते नहीं हैं, वो स्वभाव में जीते हैं। और ये शिक्षा उन्होंने अग्नि से ली। अब अग्नि को उन्होंने गुरु बनाया, जड़ को गुरु बनाया, और एक बहुत गहरी शिक्षा दी। आकाश को उन्होंने देखा और आकाश से शिक्षा ली। आकाश माने खाली, आप आकाश को देखते हैं उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है, खाली खाली। आप अंतरिक्ष में आप झांको, ऊपर झांको, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। ये जो खालीपन, और जो दत्तात्रेय ने शिक्षा ली, आकाश की तरह खाली बनो, आकाश की तरह खाली बनो। हमें आकाश होना है, आपको वेदांत को समझना है तो आप आकाश बनो। आकाश माने खाली है, इसलिए आकाश करीब करीब आत्मा है। मैं करीब करीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आकाश को, आत्मा को समझने के लिए उपमा दी, आकाश की उपमा दी। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः। उपनिषदों को आत्मा के बारे में कुछ कहना था, उनको उपमा देने के लिए कोई दृष्टांत चाहिए था। कौन सा दृष्टांत हो सकता था? उन्होंने दृष्टांत दिया आकाश, आकाशवत्। बोले वो आत्म तत्व परमात्म तत्व कैसे हैं? तो बोले आकाशवत्, वो आकाश की तरह, आकाश सर्वगत और अविनाशी, वो मरता हुआ मालूम नहीं पड़ता है, पैदा होता हुआ मालूम नहीं पड़ता है। बोले ऐसे ही और जो दत्तात्रेय ने देखा, खाली, आप अपने को खाली करो, आप ध्यान कर रहे हैं, आप खाली निर्वसन निर्वृतिक अवस्था को प्राप्त करने का भाव आपको आकाश में मालूम पड़ता है। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की आकाश से, अपने मन को खाली करो। और भी बहुत सारी शिक्षाएं ली उन्होंने आकाश, इसको हम कल करेंगे।